Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Krishna Yajurvediya Kathopanishad ke Dutiya Adhyaya प्रथम बल्ली में विचार चल रहा था। कल के प्रसंग में हम लोगों ने विचार किया कि ब्रह्म सर्वात्मा है, तो आत्मा ही जगत को उत्पन्न करता है और जो उत्पन्न हुआ वो भी आत्मा रूप है, आत्मा से भिन्न नहीं है। तो जिस आत्म तत्व ने जगत को उत्पन्न किया तो फिर वही आत्मतत्व उत्पन्न पदार्थ को क्यों नहीं जानता है? तो वेदांत की चर्चा बड़ी विलक्षण होती है, नए आदमी के लिए प्रश्न भी उल्टा लगता है, उसका उत्तर जो दिया जाता है उत्तर भी उल्टा लगता है। तो बात तो विलक्षण हो गई भाई, आप ही ने उत्पन्न किया लेकिन आप उसको जानते नहीं है, जानना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप ही ने उत्पन्न किया और आप जानते नहीं हैं। मान लो कि स्वप्न संसार को आप ही ने उत्पन्न किया लेकिन आप जानते हैं कि मैंने उत्पन्न किया। रसगुल्ले को आपने उत्पन्न किया, कहीं बाहर से नहीं लिया, सामग्री को बाहर से आपने लाई नहीं फिर भी आप उत्पन्न करते हैं मन से, लेकिन आप जानते नहीं उसको कि मैंने उत्पन्न किया। तो आपका बनाया हुआ बाघ आपको खा लेता है स्वप्न में, तो क्यों नहीं जानता है फिर? जब आप ही ने उत्पन्न किया और आप जानते नहीं उसको, होता क्या है? समस्त स्वप्न पदार्थ को आपने उत्पन्न किया लेकिन निद्रा रूपी दोष के कारण सीमित अहमता के कारण एक शरीर में आपने अहमता कर लिया, एक शरीर को ही आपने मैं रूप से मान लिया। जब एक शरीर को आपने मैं रूप से मान लिया तो आपसे अतिरिक्त जितने पदार्थ है वो पराये हो गए, दूसरे पदार्थ को भी आपने उत्पन्न किया, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। लेकिन उस समय ये भ्रांति होती है कि इस पदार्थ को दूसरा किसी ने उत्पन्न किया होगा, मैंने उत्पन्न किया, ये ज्ञान नहीं होता है। चलो तो सपने की बात है, ये द्वैतवादी लोग कहते हैं केवल तो आप सपनों का ही दृष्टांत देते हो भाई। तो एक बार जो है किसी भक्त के घर में हम गए थे भिक्षा के लिए, तो तो भिक्षा के समय जो है वो टीवी चालू कर दिया, तो उसमें कोई एक कथा कर रहे थे, भागवत की कथा, कोई विष्णु महात्मा थे। देखो ये भगवान कृष्ण ने एक कालिया नाग का दलन क्यों किया, वो प्रवचन में कह रहे हैं। तो ये वेदांती लोग जो है ना हमेशा रज्जु सर्प बोलते रहते हैं, है ना। इन लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा किया, है ना। तो ऐसे जोड़ करके बोलते हैं आजकल, लोगों को अच्छा लगता सुनने में। और कह रहे थे कि भी मटकी को क्यों फोड़ा, मटकी फोड़ा कि नहीं भगवान ने, दही की मटकी को। और जब वस्त्र का हरण किया तो मटकी को फोड़ा, वस्त्र को हरण क्यों किया भाई। ये तार्किक लोग ना हमेशा घटपट घटपट बोलते रहते, इन लोगों को कुछ आता नहीं बोलना, है उसी में लगे रहते हैं घट और पट में, है ना। इसलिए भगवान ने मटकी को भी फोड़ा और वस्त्र का भी हरण किया। तो ऐसा हो जाता है। इसलिए भी अद्वैत वेदांती को आक्षेप करते हैं, आपको कोई दृष्टांत नहीं आता कि सपना का ही दृष्टांत देते हो, तो आप जागृत में ले लो देखो, तो अपने से बनाया हुआ पदार्थ अपने दुख का हेतु बन जाता है। मान लो आप शांत होकर बैठे हैं, कोई संकल्प नहीं है, किसी प्रकार का संकल्प नहीं है, तो आप उस समय सुखी है कि दुखी है भाई, हाँ जी क्या है। कोई भी संकल्प नहीं, देखो आप सुखी है उसमें, आप शांत है, तो आपकी शांति स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। यहां पर जागृत की बात कह रहे हैं, स्वप्न की बात नहीं। लेकिन उत्तम अधिकारी के लिए ये भी सपना है, जागृत भी क्या है, ये दीर्घ सपना है, इसको दीर्घ सपना कहेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए जागृत समझ लो, तो जागृत में आप शांत में बैठे हैं, किसी प्रकार का संकल्प नहीं है, तो अपना स्वरूप तो शांत ही है, निर्निमित्तक शांति है, इस शांति में कोई भी निमित्त नहीं है। लेकिन आपके मन में थोड़ा सा संकल्प हो गया कि अपना एक मित्र बढ़िया कार में बैठ करके जा रहा है, मनोराज्य हो गया देखो, तो आप ही आपके मनोदृष्टि मनोवृत्ति का विषय कार हो गया, तो आप बाहर चले गए, बैठे हैं और आप बाहर चले गए, तब आपकी मनोवृत्ति का विषय जब कार हो गया, आप देखो परतंत्र हो गया अभी, वो कार इस प्रकार का कार अपने पास कैसे आएगा, अब उपाय ढूंढो फिर। जब तक अपने पास कार नहीं आएगा, मानस कार की बात करें, तो मानस कार आपके पास जब तक नहीं आएगा, आप शांत नहीं रह सकते। देखो आप शांत थे, अब अशांत हो गए, है ना। तो चाहे कर्जा लेकर आओ, चाहे कैसे भी लाओ पैसे को, कार तो चाहिए चाहिए, है ना। चाहे नैतिक उपाय हो, चाहे अनैतिक उपाय हो, कार तो चाहिए ही चाहिए। चलो आपके पास कार आ गया, है ना, और कार आ गया तो देखो आप जहां से आप चले थे ना वहीं पहुंच गए, समझे कि नहीं। कहां से चले थे, आप शांत थे, उसी से निकल गए बाहर, है ना। और कार आ गया तो जहां से निकले थे वहीं पहुंचे, जहां से निकले थे वहीं तो पहुंचे, लेकिन साथ में एक उपाधि आ गई, है कि नहीं भैया। पहले बिना उपाधि से आपके पास शांति थी, अभी उपाधि सहित शांति है यहां पर, है ना। तो जहां पर उपाधि आ जाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो शांति निमित्तक हो गई, निर्निमित्तक नहीं है। जहां पर उपाधि आ जाती है, तो जब तक उपाधि है तब तक आपका मन शांत है, जब तक आपका मन शांत है आप भी शांत है ना। तो गाड़ी तो आपके पास आ गई, लेकिन साथ में विक्षेप आ गया, विक्षेप देखो, फिर संभालो फिर कार को, है ना, कोई चुरा न लेवे, कहीं ठोकर न लावे, है ना। तो उपाधि आ गई कि नहीं आ गई, ये मनोराज्य कर रहे हैं, आपका मनोराज्य चल रहा है, और अचानक आपकी आंख खुल गई, खुल गई तो जो है ना, जिसको लेकर के आपके मन विक्षेप हुआ था, तो आपका मित्र कार को लेकर जा रहा था, इसलिए मनोराज्य हो गया, और देखा कि आपका जो मित्र ना पैदल जा रहा है, देखो पहले गाड़ी में बैठकर जा रहा था, अभी है देखो, तो आपका जो बना हुआ कार को तो आपने बनाया ना, है ना, तो आपका बनाया हुआ कार आपके दुख का हेतु बन जाता है, हो गया कि नहीं। लेकिन ये मालूम नहीं पड़ता है कि अपने से तो बनाया हुआ है, लेकिन मैंने बनाया, ये ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार जागृत में भी देखो, जिस आत्मा ने बनाया संसार को, है ना, लेकिन वही आत्मा को ज्ञान नहीं हो पाता कि मैंने बनाया, लेकिन बनाता है ना। तो जिसने बनाया और वही जानता है ना। तो जो भास रहा है अनात्म पदार्थ है ना, वो भी आत्मा ही है, और जिसमें भास रहा है वो भी आत्मा, और जिसको भास रहा है, देखो ये जो आत्मरूपी दर्पण है इसकी यही महिमा। देखो कल आप लोगों को बताया कि अनात्म दर्पण में तो भेद रहता है, भेद रहता है। अनात्म दर्पण में बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं होता है, अनात्म दर्पण आश्रय आश्रय हो, और आश्रित हो गया प्रतिबिंब, और बिंब और अनात्म दर्पण में भेद है, भेद है। लेकिन चित दर्पण जो आत्म दर्पण है ना, वो ही भासता है अनेक रूप से, और जो भास रहा है वो भी उसी में भास रहा है, चित दर्पण में। लेकिन माया के कारण परिच्छिन्नता आ जाती है, एक शरीर में आपकी अहमता हो गई, तो फिर आप परिच्छिन्न हो गए। देखो ये अपना एक शरीर हो गया, सपना का शरीर, इससे अतिरिक्त जितने भी है अब क्या हो गए, पराया हो गए। यानी चित्त दर्पण की यही महिमा है, वो माया को लेकर के है ना, वही भासता है, भासने वाला भी आत्मा है, और जो जिसमें भास रहा है वो भी आत्मा है, और जिसको भास रहा है वो भी आत्मा। यही वेदांत का सिद्धांत है। कितना समझ लिए तो एक क्लास पास हो गया आप वेदांत में, है ना। तो ये चित्त दर्पण है, इसलिए कहते हैं गौड़पाद भगवान, कल्पयति आत्माना आत्मानम, कल्पयति आत्मना आत्मानम, आत्मदेव स्वमाया, अस्वैव बुद्धते भेदान इदि वेदांत निश्चय। ये बात को समझ लो, है ना। आत्मा जो जगत को बनाता है वो मेटेरियल कहीं बाहर से नहीं लाता है, स्वयं ही मेटेरियल हो गया, साधन हो गया, हो गया कि नहीं। और जो भी भास रहा है वो भी आत्मा से भिन्न नहीं है, स्वयं ही अनेक रूप से दिखता है, और देखने वाला भी वही है कि नहीं। दृष्टा दृश्य दर्शन, ये माया के कारण भेद बुद्धि मालूम पड़ती है, और जग गए तो सब खत्म है ना। तो ये देखो आत्मदर्पण की महिमा है। इसलिए एक आत्मा जो सृष्टि से पहले सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, वही माया को लेकर के ईश्वर बन गया। देखो ईश्वर बन गया और समष्टि सूक्ष्म शरीर में जब प्रतिबिंबित हो गया तो उसका नाम हो गया हिरण्यगर्भ, है ना। और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में आ गया तो उसका नाम प्रमाता हो गया। विश्व भी को कोई बात नहीं है कि नहीं। अब फिर शरीर अलग अलग हो गया, मनुष्य शरीर पशु शरीर, तो मनुष्य है पशु है पक्षी है तमाम प्रकार के हो गए। नाम बदल गया, देखो नाम है ना। तो क्रिया रूपी उपाधि अलग होने से नाम बदल जाता। देखो महात्मा का नाम बदलता कि नहीं, पहले मान लो घर में देवदत्त था, अब महात्मा बन गया तो देवानंद हो गया कि नहीं, ब्रह्मचारी देवानंद हो गया। लेकिन आज संन्यास ले लो देवानंद सरस्वती हो गए, पूरी हो गए, गिरी हो गए, अनेक प्रकार के अपने अपनी परंपरा के अनुसार। तो नाम बदल जाने पर भी रूप ही बदल गया, कपड़ा बदल गया, है ना। तो ये नाम बदल जाने पर भी रूप बदल जाने पर भी जो आत्मा है जिसको प्रतिविज्ञा होती है कि मैं वही हूं, है ना। तो बाल्यवस्था थी वो चली गई, अजुव अवस्था भी है तो रहेगी क्या हमेशा, भले ही प्रयत्न करते रहिए जो अवस्था में सर रहने वाली नहीं है। ये उपाधियां जो होती है आने वाली जाने वाली होती है, लेकिन उपाधि निमित्तक व्यवहार का जो साक्षी है जिसको प्रतिविज्ञा होती है वो तो एक ही है। इसलिए यहां पर कहते हैं धर्मराज जी एक आत्मा ही है, वो अनेक रूप से भास रहा है। तो आगे देखिए अष्टम मंत्र में जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है वही परमात्मा ज्ञान शक्ति के रूप से भी बुद्धि में अभिव्यक्त हो जाती है। इसी बात को यहां पर कह रहे हैं अरण्योर निहितो जात वेदा गर्व इव सुभृतो गर्वणि भी दीवे दीव इड्यो जागृवत भीर हविस्मत भीर मनुष्य भीर अग्नि एतद्वैत जातवेदा। जातवेदा जातवेदा किसका नाम जानते हैं, अग्नि के उपनिषद में आया है ना। तो ये भारतीय अपनी परंपरा में ये अग्नि शब्द बड़ा विलक्षण है, रहस्यात्मक है। अग्नि शब्द भूत विशेषण लगाए थे तो भूताग्नि हो गई। तो काष्ट में जो अभिव्यक्त अग्नि है उसका नाम हो गया भूताग्नि, देखो है ना। और ज्ञान विशेषण लगा दिया तो ज्ञानाग्नि हो गई, है कि नहीं, ज्ञानाग्नि हो गई। और उदरस्थ जो अग्नि है अहम वैश्वानरो भूत्व, देखो जठराग्नि वैश्वानर अग्नि, इसका नाम है वैश्वानर अग्नि। तो यहां पर कहते हैं देखो धर्मराज कहते हैं अरण्योर निहितो जात वेदा, अरणी है शुष्क काष्ठ। अरणी किसका नाम है, शुष्क काष्ठ। काष्ठ में जब तक गीलापन है तब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है ना। तो इसी प्रकार जो गुरु के पास शिष्य जाता है, जो समिधा कहते ना शुष्क काष्ठ, उसको लेकर के जाता है गुरु के पास काय के लिए, भोजन बनाने के लिए क्या है, तो भोजन ही बनाएगा है ना, हवन भी करेगा गुरु। तो वो तो उपलक्षण है, उपलक्षण ये समिधा जो है ये क्या है, उपलक्षण। किसका उपलक्षण, वैराग्य, वैराग्य का, वैराग्य का सूचक है वो, है ना। जिस साधक ने जगत का परीक्षण कर लिया, परीक्ष लोकान कर्मचितान हो गए कि नहीं, तो क्या निश्चय हो गया, नास्ति अकृतः कृतेन। संसार जो अनित्य है इससे नित्य शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसकी दृष्टि से संसार कैसा हो गया? निरस हो गया। निरस, इस संसार में किसी प्रकार का रस नहीं रहा हो गया कि नहीं? ये बिना परीक्षण से नहीं हो सकता। इसे अनादि काल से खाते आ रहे, कभी मन शांत नहीं हुआ कि हमने बहुत रसगुल्ला खा लिया। ऐसा होता है कि कभी? क्योंकि रस मिल रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, क्या रस किस प्रकार से मिलेगा ये बड़ा कठिन है, होगा कि नहीं? तो कभी धन को देख करके रस मिलता है, कभी धन नहीं है फिर भी रस मिलेगा, ऐसा भी हो जाता है, होगा कि नहीं? मान लीजिए आपने सब कुछ त्याग कर दिया, महात्मा हो तो उसका जो नाम होगा ना, जय जयकार होगा, स्वामी जी बड़े विरक्त है, उसको सुन करके बड़ा रस आएगा। धन माया, इसलिए रस कैसे आएगा इसको समझना बड़ा कठिन है, हो गया कि नहीं? तो किसी को धन, किसी के पास धन है तब भी रस आता है, और किसी के पास धन नहीं है तब भी रस आएगा नाम सुन करके, ऐसा जो मैंने। तो जो साधक संसार का परीक्षण कर लिया हो तो उसके लिए क्या हो गया? संसार निराश हो, किसी प्रकार रस नहीं रहा। इसलिए जब तक विवेक नहीं करेंगे तो ये संसार का जो रस है ना, ये संसार कैसा है? गीली लकड़ी। इसमें रस है कि नहीं? ये जो अच्छे अच्छे रूप, अच्छे अच्छे रस, ये सब रस ही है ना, सवन बुद्धि जिसमें हो रही है। इसलिए विवेक के बिना ये संसार सूखता नहीं है, और जब तक नहीं सूखेगा ये ज्ञान इसको जला नहीं सकता है, हो गया कि नहीं? जैसे काष्ठ में जब तक गिलापन है तो अग्नि क्या करेगी? तो अग्नि प्रज्वलित होगी क्या? नहीं हो सकती है। इसलिए साधक क्या करता है, विवेक के द्वारा वैराग्य को प्राप्त करके संसार को सुखा देता है। लेकिन साधक संसार को सुखा तो सकता है लेकिन जला नहीं सकता है, समझ में कि नहीं? ये जलाने का सामर्थ्य विवेक वैराग्य से नहीं हो सकता है, ज्ञानाग्नि से हो, है ना? ये साधक जो साधन चतुष्ट संपन्न होकर के जाता है ना, गुरु से ये कहता है ये संसार तो है हमारे लिए क्या होगा? निरस हो गया, निरस। इसलिए आप जो है ज्ञानाग्नि से इसको आप भस्मसात कर दो, भस्मसात। साथी प्रत्यय संपूर्ण अर्थ में होता है, बिल्कुल इसको भस्म कर दो, है ना? तो ये इसीलिए शुष्क काष्ठ संविधा को लेकर के जाना होता है, फिर हवन आदि करने के लिए नहीं है, समझ में ना? तो ये देखो ज्ञानाग्नि है, तो भूताग्नि में क्या है, दो काष्ठ होते हैं, तो एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है भाई, उसे मंथन करके, वर्णी हो गया ना सूख काट, उसको मंथन करके अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, है ना? तो केवल व्यवहार में दो काष्ठ दो अर्णी से अग्नि का मंथन नहीं किया जाता है, अग्नि को प्रकट नहीं किया जाता है। यहां पर भी जो अध्यात्म मार्ग में, यहां पर भी दो काष्ठ, देखो दो काष्ठ है, समझ में ना? साधक के लिए भी दो काष्ठ है, अध्यात्म मार्ग में दो काष्ठ है। तो यहां पर दो काष्ठ क्या है? एक हो गया शिष्य और एक हो गया गुरु, है ना? तो नीचे की लकड़ी है शिष्य और ऊपर की लकड़ी क्या है? गुरु। भाई ये क्या नीचे एक है ऊपर एक, क्या लड़ाई करनी है दोनों में? हाँ, गुरु शिष्य में लड़ाई नहीं करनी है, हाँ लड़ाई नहीं करनी है। एक गुरु जो उपदेश छोड़ते हैं ना, उपदेश वेदांत, शुद्ध वेदांत की चर्चा है ना, ये वेदांत शब्द का जो टकराव है साधक के अंतकरण में, है ना? ये वेदांत का जो उपदेश है, है ना, ये क्या है? ये मंथन है, मंथन, ये मंथन करना पड़ेगा। वेदांत की चर्चा, शुद्ध वेदांत की चर्चा होनी चाहिए। अपनी परंपरा अनुसार चर्चा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध वेदांत की चर्चा। शुद्ध वेदांत की चर्चा हो तो मंथन होगा, नहीं तो कैसे होगा? शुद्ध वेदांत यही है कि वेदांत का जो रहस्य है बस उसी की चर्चा करो, उसमें इधर उधर की चर्चा नहीं करनी है। इधर उधर चुत्ता ही तो प्रवचन आदि में होता है, है ना? तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम ना प्रमोदितव्यम बोलते ना। ये प्रवचन मतलब आजकल जो प्रवचन है वो प्रवचन नहीं है। यहाँ पर प्रवचन का अर्थ क्या है? शुद्ध वेदांत की चर्चा, अध्यापन। एक तो भाई अध्ययन करो, नहीं तो क्या करो? अध्यापन करो। ये स्वाध्याय हो गया अध्ययन, ओके कि नहीं? अकेले तो क्या करिए? अध्ययन करिए। आज ये साथ में चर्चा करनी तो अध्यापन करिए भैया। ये अध्ययन करो नहीं तो अध्यापन, ये हो गए वेदांत की चर्चा। ये देखो इसी को शुद्ध वेदांत की चर्चा, जैसा उपनिषद का रहस्य है उसके बारे में आप चर्चा करो, क्या शंका है, इससे क्या समाधान होगा, है ना? इसीलिए हमारा आधार क्या है? भगवान भाष्यकार का भाष्य, ओके कि नहीं? ये वेदांत की परंपरा में शुद्ध चर्चा करनी है तो आधार क्या होना चाहिए? भगवान भाष्यकार का भाष्य, इसके आधार पर चर्चा करो, है ना? तो गुरु शिष्य में जो चर्चा है ये हो गया मंथन। मंथन तो ये मंथन होने पर जो है ना, ये शिष्य की शुद्ध बुद्धि में, ना शुद्ध अंतःकरण में ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी, है ना? तो व्यवहार में अग्नि क्या है कि अरणि का मंथन करने पर जो अग्नि प्रकट होती है, तो अग्नि पहले से है कि नहीं? काष्ठ में तो अग्नि पहले से है कि नहीं? माचिस में तो अग्नि पहले से है, लेकिन उसी अग्नि से हवन थोड़ी होगा। अनहिव्यक्त जो अग्नि है माचिस में, उस अग्नि से तो माचिस भी नहीं जलता है। उस अग्नि से कहां माचिस जलता है? ना हवन होगा ना माचिस जलेगा। फिर जो अनहिव्यक्त जो अग्नि है, छुपी हुई जो अग्नि है ना, उसको प्रकट करना पड़ता है। तो प्रकट होने वाली अग्नि में हवन किया जाता है। और आपके पास जितने भी सामग्रियां हैं हवी, सब उसमें छोड़ दीजिए। जितना छोड़ते जाइए सब भस्मीभूत हो जाएगी, वो भी अग्नि रूप हो जाएगी कि नहीं, है ना? तो इसी प्रकार से वेदांत की चर्चा से पहले तो परमात्मा कण कण में है, है ना? जैसे काष्ठ में, काष्ठ के कण कण में अग्नि है, उसी प्रकार यहां पर भी परमात्मा सर्वत्र कण कण में व्याप्त है। लेकिन जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है वो तो सामान्य परमात्मा, सामान्य चेतन। उस सामान्य चेतन से आपका अज्ञान नहीं जाएगा, अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान का दूर होने वाला नहीं है। वो तो सबको आश्रय देता है, सामान्य चैतन्य सबको आश्रय देगा, उससे अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? वो परमात्मा जब शुद्ध अंतकरण में ज्ञान शक्ति रूप से प्रकट हो जाएगा, उसी का नाम क्या है? ज्ञानाग्नि। शुद्ध वेदांत की चर्चा करेंगे, है ना? साधन चतुष्टय संपन्न होकर के संशय विपर्य जब रहित हो जाएगा अंतकरण, है ना? अंतकरण में किसी प्रकार का संशय न हो, ना प्रमाण का संशय हो, ना प्रमेय का संशय हो, ना संशय हो, ना विपरीत भावना हो। संशय विपर्य रहित होने पर जो शुद्ध अंतकरण होता है उसी में ब्रह्माकार वृत्ति होती है। ब्रह्माकार वृत्ति